चलिए अब अगला एक और बहुत ही खूबसूरत एस्पेक्ट, इसको जज्ब करें। ये मौजू ही ऐसा है, अगर हम इस मौजू पे बात सुनते वक्त ऐसे महसूस कर सकते हैं ना, तो याद रखिए नमाज पढ़ते और इबादत करते वक्त फीलिंग ऑफ दी वर्शिप में हमारी क्या कैफियत होनी चाहिए। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अल्लाह करे हमारे दिल की ये कैफियत बने। तो रोल ऑफ वर्शिप सेकंड चीज क्या है जो जरा सा आपको समझनी पड़ेगी, मादी चीजों का रूहानी चीजों में ढल जाना। आप भी और मैं भी एक मादी वजूद है ना, ठीक है, नमाज की भी एक जाहरी हैयत है, इबादत कह लीजिए, कुछ मोड्स है ना, क्याम है, रुकू है, सुजूद है, ये मादी चीजें यानी मेटीरियलिस्टिक थिंग्स स्पिरिचुअलिटी में बदल जाती है। अदरवाइज नमाज क्या है, किसी ने अगर किसी मुसलमान को नमाज पढ़ते हुए देखा और उसको नहीं पता था ये क्या होती है, तो वो क्या कहेगा, ही इज एक्सरसाइजिंग। कोई कह रहे नहीं भाई ये खालिक के सामने खड़ा इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है। नमाज की जो जाहरी हैयत है ना, अगर इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी आ जाए तो फिर याद रखिएगा कि ये एक ऐसी चीज में बदल जाती है कि जिसको आप नाप नहीं सकते। आप ये समझ लीजिए कि आप नमाज में खड़े हुए, अल्लाह ताला के सामने आपने अपने आप को पेश किया, आपकी आंखों के आंसू, आपके जज्बों में वो इस तरह से नमाज जाके चेंज हुई कि आप अपने आप को अल्लाह के सामने ऐसे महसूस करते हैं कि जैसे आपका वजूद आपके जिस्म का एक एक हिस्सा बोल बोल के बता रहा है कि आपका वजूद घुल गया और आप अपने रब के साथ चले गए। अल्लाह ताला ने इंसान के अमाल के पीछे अल्लाह के होने के वजूद का एहसास रखा हुआ है, और अगर इंसान अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी नीयत को, अपने किबले को सही मानों में अल्लाह की तरफ चेंज कर लेना और अपने आप को अल्लाह ताला के सामने खादिम की हैसियत से खड़ा कर दे, यहाँ तक कि फिर उसके जिस्मानी काम, खाना पीना, कपड़े, सफ़र, मिलना, मुलाजमत, तालीम, घर की चीज़ें, ये सब रूहानी हो जाते हैं। इसके बरक्स बाज़ औक़ात कामों का सबसे मुकद्दस काम इबादत भी मादियत प्रस्ती और दिखावे और शोहरत की नज़र हो जाए ना तो सब खत्म हो जाता है। नमाज आपको मुझे रूहानियत में ढालती है। आप ना नजर आने वाली हस्ती के सामने खड़े हैं और उसके सामने रो रो के कह रहे हैं या का नाबुद व या का नस्ताइन, तो फायदा क्या होता है कि आप अपने आप को एक ना नजर आने वाली चीज के हाथों में दे देते हैं। देखिए ना, आपकी मेरी लिमिटेशन है, हमारे पैसे की भी लिमिट है, हमारी ताकत की भी लिमिट है, तो जब आप अपनी लिमिटेड चीजों को एक इनफिनिट हस्ती के सामने पेश कर देते हैं ना, तो आप कह सकते हैं कि मटेरियल लाइफ से उठकर स्पिरिचुअल लाइफ में चले जाते हैं। फिर आप इस दुनिया के अंदर रहते हुए वो नहीं कर सकते जो आप कर सकते हैं, आप कहते हैं नहीं वो भी कर सकती हूँ जो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि इन्नमा रब्बी सयहदीन। किसने कहा था ये जुमला, मूसा ने कहा था? कभी अंबिया का अकीदा तो पढ़िए, दिल चाहेगा कि हम भी बस वैसे ही बन जाएं। तो आपको फिर मादी वजूद से ऊपर उठकर स्पिरिचुअल ताकत मिल जाती है, तो स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। फिर इसी तरह से एक और रोल देखिए इबादत का, इनफरादी और इज्तमाही सरगर्मी। आप अकेले एक पत्थर भी नहीं हटा सकते और अल्लाह से मदद मांग के आप मुसीबतों दुखों के पत्थरों को अपनी जगह से हटाते हैं के वस्ताईन बिस्सब्री वस्सलाह, और रंज और तकलीफ में सब्र और नमाज से मदद लिया करो, इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लिल खाशीन, मगर इन लोगों पर गिरा नहीं जो इज्ज करने वाले हैं। क्या पता चला अकेले में जो बातें की जाती हैं वो भी, और जो दूसरों के साथ मिलके भी बातें की जाती हैं, इज्तमाही बातें कह लीजिए, ये सब कुछ हमें इन्फोर्स करती हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने आपके मेरे लिए एक ऐसा खूबसूरत इबादत का निज़ाम बनाया। मसलन देखिए कि रोज़ा आपकी इनफरादी इबादत है, लेकिन जब सबके साथ मिलकर एक ख़ास महीने और मौसम में रोज़े रखेंगे तो इज्तमाही बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हज एक इज्तमाही इबादत है। जितना ज़्यादा हम इतने मुसलमानों के साथ मिलके हज करते हैं, उतना हमें उसमें ताकत मिलती है, इज्जत मिलती है। तो जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला की इबादत को अच्छे तरीके से करेंगे, इनफरादियत के साथ करें, इज्तमाहियत के साथ करें, आपको लगेगा कि हम एक रब के बंदे भी हैं और एक ख़ानदान है पूरा। और याद रखिएगा कि इबादत का मतलब अल्लाह ताला के सीधे रास्ते पे चलना भी होता है। माने बदू निहाजा सिरात मुस्तकीम। ये जो दिन में नमाज़ पढ़ी जाती है कई बार और मस्जिदों में भी जमात के साथ भी जो अदा की जाती है ना, असल में ये एक इज्तमाही निज़ाम को पैदा करने वाली बात है। तभी तो कहते हैं अकीम उस्सला, नमाज कायम करो, ये नहीं कि नमाज़ पढ़ो। तो फिर क्या तीसरा रोल है नमाज का, कि कभी कभी इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे और कभी कभी सबके साथ मिलकर आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि जिसमें एक अल्लाह ताला की ज़रूरत महसूस होती है। और आप जमा की चीज़ें बस ताइनो जमा है, तुम सब मिलकर मदद मांगो नमाज और सब्र के साथ। और ये भी याद रखिएगा कि बंदा बंदा नहीं रहता अगर सब्र ना करे। अल्लाह सुबहान ताला इबादत के ज़रिए आपको मुझे गुनाहों से दूर करता है। दिल में तड़प है गुनाहों की, मांगी अल्लाह से कि अल्लाह नहीं मुझे नहीं चाहिए गुनाह, मेरा दिल बदल दे। अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला को अपने करीब महसूस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में खैर आएगी। मैं थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके साथ रखती हूँ। एक लड़की है, शादी होके कहीं गई, 5 वक्त की नमाजी भी, पाक दामन बच्ची, पता क्या चला कि मियाँ तो नमाजी नहीं पढ़ता। कुछ दिन के बाद पता चला कि ये तो रात को नशा करके आता है, और तीसरी बात यह कि ये तो गालियाँ बोलता है। आप मुझे बताइए कि एक लड़की जो 5 वक्त की इबादत गुजार रहा है, वो ऐसे शख्स के साथ कैसे रहेगी? नहीं रह सकती। या तो ऐसा ऐसा उसकी भी इबादत कम हो जाएगी, उसका भी अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर होगा, या फिर शोहर के साथ ताल्लुक़ कमज़ोर होगा। यानी या झगड़े अल्लाह के साथ होंगे तो या शोहर के साथ होंगे। अकेला रहना काफ़ी है किसी बेनमाजी के साथ रहने से बेहतर है। ये लिख लो ये बात, बेनमाजी के साथ रहते हुए आपकी स्पिरिचुअलिटी कायम रह ही नहीं सकती, इल्ला माशाल्लाह। औरतें बेचारियाँ जो जिंदगियाँ गुजारती हैं बाज़ औक़ात हालात की चक्की में पिसने के बाद, वो नमाज ना पढ़ना तो बड़ी छोटी बात लगती है, वो तो दिलों में बुत लेके बैठे हुए हैं। उनके तो अपनी जीने के अंदाज हैं। कैसे खुश रह सकती हूँ मैं आपके साथ अगर मेरा आपका मिजाज ही नहीं मिलता? आप मुझे खिलाएं, आप मुझे पिलाएं, आप मुझे दुनिया की हर दौलत दें, मैं आपके साथ खुश नहीं रहूंगी। मुझे आपसे इबादत और मोहब्बत की खुशबू आनी चाहिए। आज का आखिरी टॉपिक करेंगे हम इसके बाद कि हम इबादत करें कैसे। फिर अहम टॉपिक है ये भी जहन में रखिएगा, क्योंकि तरीका ही ना बताओ तो फिर तो वही है जो शुरू से चल रहा है, जिस तरीके से कर रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ वर्शिप क्या हैं, हमें नमाज पढ़नी कैसे है, इबादत के क्या डिफरेंट तरीके हैं। तो ये चीज़ों को हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी इसमें नंबर एक क्या है, कॉन्शियसली इबादत करना। इबादत एक पहाड़ा पढ़ने का नाम नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 नहीं है। इबादत शौरी कैफियत का नाम है और इसकी दलील है कुरान पाक में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून। ए ईमान वालो, तुम नमाज के पास भी ऐसी हालत में मत जाओ कि तुम नशे में हो, यहाँ तक कि तुम समझने लगो कि मुंह से क्या कहते हो। हदीस का खुलासा है कि तेरी नमाज का सिर्फ वही हिस्सा कबूल है जिसमें तेरा दिल हाजिर है। तो क्या पता चला कि आप जब नमाज पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि आप नमाज कैसे पढ़ते हैं। हमारी ज़िंदगी इस तरीके से गुजरे कि जब हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हों तो अपने एक-एक लफ्ज़ के जिम्मेदार हो। देखिए इसको समझिएगा, जब हम कोई भी बात करते हैं तो क्या हम अपने लफ्ज़ों के जिम्मेदार होते हैं? मसलन मैं आपको कुछ कहूँ तो बाद में मैं कहूँ कि देखें मैंने आपको जो कहा है ना, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, आप लिख लें, आप रिकॉर्ड कर लें, और बाद में आप मुझसे मेरे एक एक लफ्ज़ के बारे में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इनकार नहीं करूँगी कि मैंने ये कहा। कभी ये टोन हुई हमारी? कहने और ना कहने के बीच में खामोश सी अप्रूवल होती है। कोई गलत कह दे, गलत अंदाज ले ले, उसको मिसअंडरस्टूड करे, वो उसकी मर्जी है। एग्जैक्टली लिखिए, हमें किस तरह इबादत करनी है? हमें इस तरह इबादत करनी है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ आवर वर्ड्स एंड आवर एक्शंस। और जिन साथियों ने इस आयत की तफसीर सुनी है उनको याद होगा कि ये शराब की हुरमत का इंटरफेस है। अभी शराब पूरी तरह हराम तो नहीं हुई थी, लेकिन ये कह दिया गया था कि ना पियो तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, हमें पता है डेंजरस है ये फिजी ड्रिंक्स, लेकिन हम पीते हैं, ये कैफियत है। और एक दिन किसी दावत के बाद नमाज के दौरान अकीदे का झोल आने लग गया लफ्ज़ों में, यानी कुछ ऐसे जुमले निकल गए सूरत काफिरून पढ़ते हुए कि जिसमें मानी ही बदल गया, तो अल्लाह ने फिर आयत उतार दी कि ला तकरबु सला तब अंतुम सुकारा, आज के बाद अब तुम नमाज नहीं पढ़ सकते जबकि तुम नशे की हालत में हो। तो फिर लोगों ने नमाज से पहले शराब पीनी छोड़ दी, वो एक अलग इशू था। लेकिन सवाल क्या होता है, नशे की हालत में तो नहीं पता चलता कि क्या कहा है, तो क्या आपको मुझे बगैर नशे के भी पता होता है कि हम नमाज में क्या पढ़ चुके, क्या कह चुके, कैसे कहा? सोचिए आप, अल्लाह हू अकबर। पता है आज फजर में क्या कह दिया अल्लाह को हमने, जोहर में, असर में, कल, परसों? नहीं, तो वी शुड नो व्हाट वी आर टेलिंग। इबादत जो भी करें, चाहे अरबी में पढ़ रहे हैं, और सिर्फ नमाज ही को ना जहन में रखिए, बाकी भी चीज़ें जहन में रखिएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये पहली चीज़ है, पूरा एहसास हो पैदा हो कि हम जो कुछ कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं, और कम अज़ कम नमाज का तर्जमा तो आता हो। ये कौन सी बहादुरी है कि आप इतने पढ़े लिखे हो गए, आपके नाम के साथ डिग्रियाँ लग गई, आपके पास दौलत के अंबार हैं, आपकी शादी हो गई, आपका इतना बड़ा घर है, आप माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, आप इतने अच्छे अच्छे खाने पकाती हैं, और आपको नमाज ही नहीं आती? नमाज के अंदर गलतियां भी हैं, और मानी नहीं पावी, तो हम सिर्फ मानी की बात कर रहे हैं ना। ज़रूरत इस बात की कि हम इस पे गौर करें। और सल्लु कमा रअयतमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे कि तुम मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। तो फिर हमने समझ के पढ़नी है नमाज, थोड़ी सी आवाज़ से पढ़ी है, जो कह रहे हैं वो लफ्ज़ आपके कान भी सुने। फिर दूसरी चीज़, हम इबादत कैसे करें? मोहब्बत, शौक और जज्बों के साथ इबादत कीजिए। आप देखिए, बीमार होता है ना जो शख्स, वो खाने को एंजॉय नहीं करता। आप मिन्नतें करें, तरले करें, खा लें, लेकिन उसका दिल ही नहीं करता। इसी तरह याद रखिएगा, जो काम भी शौक और जज्बे से ना किया देना, उसमें थकन होती है। जिस काम में आपका दिल लगता है ना, आप कभी नहीं उसमें थकते हैं। क्या आप जो काम भी करें, आपको जो काम दिया जा रहा है ना, उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के करें, और फिर उसको अपनी इबादत करें। आपकी नमाज जो है ना, आपकी ये क्लास है, आपको जो अल्लाह ने जिम्मेदारी दे दी ना अपने रास्ते में, ये आपकी नमाज है, ये आपकी इबादत है। तो शौक के साथ करें, और शौक तो दिखता था ना अल्लाह के नबी का और सहाबा का, या बिलाल अरिहना बिस्सलाम, कितने प्यारे मज़े मज़े के जोक्स हैं अल्लाह के नबी के। बिलाल अजान दीजिए, हमारी आंखों को ठंडक पहुँचाइए नमाज के ज़रिए। वो तो ऐसे मस्जिदों में झूमते झूमते जाते हैं, क्या कोई कॉन्सर्ट के लिए या सिनेमा घर में मूवी देखने जाता हूँ। मोहब्बत, शौक और जज्बे कामों को आसान कर देते हैं। आइए आज दुआ करते हैं, पहले तो मेरे लिए कीजिए आप सारे, फिर मैं भी आपके लिए करती हूँ। अल्लाह इबादत में दिल जम जाए, शौक लगे जाए, तो शौक लाइए, अल्लाह से मांगिए, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक। और आप जानते हैं ना कि ये दुआ कहाँ मांगी जाती है, राइट आफ्टर सलाम फेरते। रब्बी आइन्नी, अल्लाह मेरी मदद फरमा, आइनी अला जिक्री का, तेरा जिक्र कर सकूँ, व शुक्री का, तेरा शुक्र कर सकूँ, वाह हुस्नी इबादतिक, और तेरी इबादत को खूबसूरत तरीके से कर सकूँ। और शौक़ बढ़ाइए, अल्लाह से मांगिए। और शौक़ किस चीज़ में आता है? जिसमें आपकी दिलचस्पी होती है। दिन ब दिन नमाज को खूबसूरत करते जाएं, तर्जुमे को, लफ्ज़ों को। और फिर अगली चीज़, हम इबादत कैसे करें? इखलास के साथ इबादत कीजिए। सूरत कहफ में अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, वला युशरिक बि इबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करना। क्या दुनिया में आप और मैं पसंद करते हैं कोई शरीक हो? बीवी हैं तो कोई आपके साथ शरीक हो जाए, यानी आपके शौहर दूसरी शादी कर ले। फितरत इंसान शराकत को पसंद ही नहीं करता। ज़रूरत है इस बात की कि आप और मैं इसके ऊपर अपने आप को लेके चले। तो इसमें क्या होगा कि आप मैं सिर्फ अल्लाह के लिए, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, मैं सिंसियरली इबादत करूँगी। और देखिए, अपने घर वालों से छुट्टी मांगिए। पांच नमाजें, पांच ब्रेक हैं, और जितनी आप इज्जत देंगी, मोहब्बत देंगी, शौक देंगी, जज्बा देंगी ना इबादत को, दूसरे भी देंगे। कभी कोई बंदा आपको वॉशरूम के बाहर नॉक नहीं करता, आप जानती होंगी। कैसे करें, कितनी बड़ी बात है। अब एक बंदा अपनी ज़रूरत से फारिग हो रहा है और आप उसको लगी हुई है बाहर से नॉक करते करते, ये तो बहुत शर्म की बात है। तो बस लोगों को शर्म आ जाए आपको तंग करते हुए। तो आज से अपनी नमाज के अंदर ये चीज़ लेकर आएंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप इज्जत देना शुरू कर दें नमाज को, और सिंसेरिटी, मुखलिस, दिस टाइम इज़ ओनली फॉर माई अल्लाह सुबहान तआला। नेक्स्ट पॉइंट, खुशू खुदू वाली इबादत करें। ऐसे झुक जाएं, ऐसे टूट जाएं कि आप को देखकर ऐसे लगे जैसे कोई मुलजिम कटहरे में खड़ा है। और सूरत मोमिनून में अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, मोमिनों की सिफात, अल्लज़ीनहुम फी सलातिहिम खाशियून, जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं। खुशू दिन में कम से कम पांच मर्तबा खुशू की कैफियत तारी कीजिए। हदीस में आता है ना कि कुरान पढ़ो और रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बना लो। आप पोज कीजिए, बिल्कुल अकेले में होंगी ना तो इजी होगा, क्योंकि फितरी तौर पे हम पसंद ही नहीं करते क्या कि कोई दूसरा हमारी जज्बात को देखे। आप इवन अपनी दोस्त के साथ बात कर रही हैं, या अपनी माँ से, या बहन से, या शौहर से, किसी से भी करते हैं, तो आपको अच्छा तो नहीं लगता ना कि दूसरा भी साथ देख रहे हो। बिल्कुल इसी तरह खुशबू लाइए, रोए कोई बात नहीं। अबू बकर की सुन्नत है, कान अबा बकरिन रजुलुन बकान, उनकी बेटी कहती है कि मेरे बाप अबू बकर रोने वाले आदमी थे, और उनको अपनी आँखों पर इख्तियार ही नहीं रहता था जबकि वो नमाज पढ़ते थे। लोग परेशान हो गए, अबू बकर सिद्दीक मक्का छोड़ के जा रहे हैं, क्यों भाई क्या हुआ? नहीं, मैं नहीं रहता तुम्हारे बीच में, तुम लोग बहुत नकदरे हो। नहीं 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 मेरे साथ चलिए। अल्लाह के नबी के साहबी को लेकर अपने साथ गए, और जाकर हरम में खड़े होके कहा कि देखो खबरदार, आज के बाद अबू बकर को कुछ कहा, ये मेरी अमान में है। और ये उस दौर का रिवाज था, एक किस्म की इंश्योरेंस थी कि इस बंदे को अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं पूछूंगा। लोगों ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, बस एक हमारी शर्त है कि अबू बकर हरम में आकर नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्यों भाई खैरियत? कहा इनकी नमाज पढ़ सुनकर हमारे दिल को कुछ होता है। अच्छा नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अबू बकर मानते हैं हम जी, ठीक है कोई बात नहीं, घर में पढ़ लेंगे, उधर कोना बना लेंगे मस्जिद, कोई बात नहीं। मुसलमान वैसे थोड़ी करते हैं, वो तो रूह पे काम करते हैं ना। अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर के एक कोने में एक ऐसी जगह बना ली कि जहाँ अबू बकर नमाज शुरू हो गए पढ़ने। हालांकि उस वक्त कोई नमाज की इस तरह की फॉर्म नहीं थी, ये तो उनकी अपनी पर्सनल इबादत थी। चंद दिन गुजरे, मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर आ गए कि बात सुनिए, अबू बकर जहाँ मर्जी जाकर नमाज पढ़ें, घर में नहीं पढ़ेंगे। भाई अब क्या हो गया? का इनकी नमाज, इनके खुशू और इनके खुदू की वजह से, इन आवाज़ों से मुतासिर होकर हमारे बच्चे और हमारी औरतें इस्लाम के करीब आ रहे हैं, और हमें ये कबूल नहीं। अल्लज़ीनहुम फी सलातिहिम खाशियून, जो जो अपनी नमाजों में खुशू करने वाले हैं। और एक आखिरी पॉइंट, इबादत कैसे करें? जमात में इबादत, तन्हाई वाली इबादत है। कभी तन्हाई में हम ख़वातीन और कभी जमात में भी इबादत करें, ये भी एक तरीका है। मसलन जुमे की नमाज़ों में जाइए, बाहर जाकर सबके साथ ख़वातीन में जमात से जुमा पढ़िए। इसी तरह हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह तो मगरिब और इशा पे चले जाइए, अपने बच्चों को साथ लें, हस्बैंड वाइफ फैमिली मगरिब इशा मस्जिद में पढ़ें, इन बिटवीन टाइम वहीं इबादत का टाइम बनाएं। मौका मिल जाए तो फजर की नमाज़ में शोहर के साथ चली जाइए आप भी मस्जिद में, इससे भी फ़ायदा होता है, मुसलमानों का गलबा आता है। यकीन करें मैंने जो मस्जिद की रूह है ना वो शादी के बाद देखी है, माजरत के साथ शुरू से पाकिस्तान में ताल्लुक था मस्जिद से भी था, जुमे की नमाज़ तो अमूमन ही मस्जिद में हम पढ़ते थे, लेकिन जो मस्जिद की रिस्पेक्ट और मस्जिद के साथ एक ऑनर देखी ना वो अमेरिका में जाके देखी। तो अल्लाह से दुआ है कि हमारी नमाजें जिंदा हो जाएं। आज आपको कम अज़ कम इस बात का ख्याल ज़रूर आना चाहिए कि इतनी अहम इबादत दिन में 5 बार जिसका मौका मिलता है, अल्लाह ताला से ताल्लुकात बेहतर करने का 5 दफ़ा का मौका, अपने गुनाहों की आग बुझाने का 5 दफ़ा का मौका, इसको ज़ाया ना कीजिए। और अब बच्चे भी घरों में अल्हम्दुलिल्लाह, शौहर भी हैं, मर्दों के साथ मिलकर नमाज को मौजू बनाइए। पहला सवाल जो क़यामत के दिन का है वो नमाज का, हमारी सारी दीनदारी हमारे हाथों में रह जानी है, हमारे पर्चे हमारे हाथों में पड़े रह जाने हैं अगर हमने नमाज को तवज्जो न दी। जज़ाकअल्लाह खैर, अकीम अस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।